आज के सुसमाचार में संत पेत्रुस प्रभु से प्रश्न करते हैं कि हमें कितनी बार अपने भाइयों को क्षमा करते जाना चाहिए, और संत पेत्रुस पूछते हैं क्या 7 बार काफ़ी है। प्रभु कहते हैं 7 बार नहीं, 70 × 7 बार। और प्रभु आगे इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाते हैं 2 कर्जदारों के बारे में। यहाँ पर कहा गया है कि एक राजा लेखा लेना चाहता था, एक राजा लेखा लेना चाहता था। इसी बात को अगर हम ध्यान देंगे, ईश्वर भी लेखा लेते हैं, ईश्वर भी लेखा लेते हैं। ईश्वर लेखा लेने वाले ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर नाई है, ईश्वर नाई है, नाई पिता है ईश्वर। नाई करने के लिए ईश्वर लेखा लेते हैं। हम क्या करते हैं इसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि ईश्वर लेखा लेते हैं। अगर हम गलत काम करेंगे उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा, और इसी प्रकार अगर हम अच्छे कार्य करेंगे हमें उसके वरदान प्राप्त होंगे। तो जो फल हम उत्पन्न करते हैं उसके अनुसार ईश्वर हमें दंड या वरदान प्रदान करते हैं, और इसलिए ईश्वर लेखा लेते हैं। तो एक राजा लेखा लेना चाहता था, और जब लेखा लेना शुरू हुआ तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया, और उसको अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लाखों रुपए का कर्जदार था। वो ऐसा भी नहीं कर सकता था, इतना मेरे पास है, 10,000 है मेरे पास, ये रख लीजिए और बाकी के लिए थोड़ा और रुकिए, मैं और थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। इतना भी नहीं है उसके पास, जरा सा भी नहीं है। कर्ज अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जब लाखों रुपया का कर्ज है वो वापस करना है, तब उसके पास जब कुछ भी नहीं रहता, वो राजा सोचता होगा थोड़ा कुछ अगर दे देता फिर मुझसे कहता मुझे टाइम चाहिए, समय चाहिए, मैं दे दूंगा थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। और वो क्या करते हैं, अदा करने के लिए जब उसके पास कुछ नहीं था तो स्वामी ने आदेश दे दिया, इसको पकड़ लो और उसकी पत्नी और बच्चों के साथ और सारी जायदाद के साथ बेच देना और ऋण चुकाना। इस प्रकार उनको पकड़ने लगते हैं तो वो स्वामी के सामने आते हैं, गिड़गिड़ाकर उनके पैरों पर गिरकर कहते हुए अनने विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा। ये आदमी ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ये कर्ज चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन सिर्फ यही मांगता है समय दीजिए, समय दीजिए, मैं कर दूंगा, यानी समय देने पर मैं इसको चुका दूंगा। लेकिन स्वामी क्या करते हैं, स्वामी नहीं बोलते ठीक है कितना समय चाहिए, ये नहीं पूछते, ठीक है 1 साल और रुक जाओ तुम, 1 साल के बाद मेरा पैसा वापस दे देना, ऐसा नहीं कहते। स्वामी उसको न केवल समय देते हैं, स्वामी बोलते हैं तुम्हारे कर्ज माफ़ हो गया, तुम्हारे कर्ज माफ़ हो गया। क्योंकि कहा गया है स्वामी को उस पर तरस आ गया। पवित्र वचन कहता है संतमती के सुसमाचार के वाक्य अध्याय 18 वाक्य 27 में, उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। न केवल समय दिया लेकिन पूरा कर्ज माफ कर दिया। कितना बड़े हृदय वाला व्यक्ति है स्वामी। पवित्र ग्रंथ कहता है जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर चुका दो। पहले वाले में स्वामी ने उसको पकड़ा नहीं था, उसका गला घोटा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको बताया गया है ये सहसेवक का गला घोटता है यह सेवक। गला घोट कर कहा, अपने कर्ज चुका दो। सहसेवक ने पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अन्य विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपका सब कुछ चुका दूंगा। समय इस प्रकार उसने प्रार्थना किया था, उसके सामने वो सहसेवक अभी उसके सामने प्रार्थना करता है, परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक अपना कर्ज न चुका दे। ये सब बातें स्वामी के पास पहुंचती है। स्वामी उसको पकड़कर उससे कहता है, मैंने कितनी दया तुम्हारे ऊपर दिखाई थी, तुमको थोड़ी सी दया उस बेचारे के ऊपर दिखाना था, तुमने नहीं दिखाया, इसलिए मैं तुमको बंदीगृह में डाल दूँगा, तुम्हारा सब कुछ बेच डालूँगा, तुम बर्बादी की ओर जाओगे, तुम्हारी करनी से तुम बर्बादी की ओर जाओगे। यानी दूसरों को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को हम क्षमा नहीं करेंगे, हम बर्बाद होंगे। दूसरों को क्षमा करने से हम दूसरों के लिए कोई बड़ी कृपा नहीं करते हैं, हमारी बर्बादी को हम रोकते हैं। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हम बर्बाद होंगे, ये हमें समझना चाहिए, ये बात हमें हमेशा याद करना चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 32 और 33 में हमने बार बार उस बात पर ध्यान दिया था कि किस प्रकार याकूब अपने भाई एसाव के सामने विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। याकूब ने एसाव को धोखा दिया था, अब एसाव के सामने 3 बार घुटने टेक कर नतमस्तक होकर एसाव के सामने याकूब क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और एसाव ने उसको क्षमा किया। पवित्र ग्रंथ कहता है एसाव ने आंखों से आंसू बहाकर अपने भाई को गले लगाकर उसको क्षमा किया। कभी कभी हम लोग क्षमा बहुत मुश्किल से करते हैं, यहाँ पर गपा अपने भाई को गले लगाकर आंखों से आंसू बहाकर क्षमा करता है, मतलब हृदय से क्षमा करना। कभी हम बोलते हैं क्षमा करते हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों से बोलते रहते हैं इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया करके, क्योंकि हम हृदय से क्षमा नहीं करते हैं। अगर हम क्षमा करते हैं तो हमारे उस भाई के लिए या बहन के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में हमें प्रभु का वचन इसके बारे में समझाते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 38 से 48 तक, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उस दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो। ये प्रभु आगे जाते हैं, शत्रुओं को क्षमा करो ये तो ठीक है फिर भी, लेकिन प्रभु कहते हैं शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी अच्छाई सोचो, उनकी भलाई सोचो, प्रेम करो। और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो। शत्रुओं से प्रेम करने से हमें पुरस्कार मिलेगा, अपने दोस्तों को प्यार करने से हमें पुरस्कार नहीं मिलेगा, शत्रुओं से प्यार करने से हमें पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार की बात है, साधारण सी बात नहीं है। साधारण सी बात के लिए हमें पुरस्कार नहीं मिलता, असाधारण बातों के लिए हमें पुरस्कार मिलता है। इसीलिए प्रवचन कहता है, अगर तुम अपने दोस्तों को ही प्यार करते हो तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? पुरस्कार उन्हीं को मिलता है जो असाधारण काम करते हैं, किसी काम को अच्छी तरह कर डालते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:14-15, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों के क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी अपराध तुम्हारा क्षमा नहीं करेगा। अगर हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करते हैं, स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। पेत्रुस के पहले पत्र में 3:9 में संत पेत्रुस कहते हैं, पेत्रुस के पहला पत्र 3:9, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली ना दे बल्कि आशीर्वाद दे। यही करने के लिए हम बुलाए गए हैं, आशीर्वाद देने के लिए। संत पेत्रुस कहते हैं, हम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए, यही करने के लिए हम बुलाए गए हैं, हम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हम हमारे विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए संत पेत्रुस के इन वचनों पर ध्यान देना चाहिए, हम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। कोलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस 3:12-17 में, संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए 3:12-17 में हमको समझाते हैं, इससे भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अगर हम पवित्र बनना चाहते हैं, अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये कड़ोसियों को लिखते हुए संत पौलुस 3:12-17 में समझाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अभी क्या क्या करना चाहिए, अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, सहनशीलता धारण करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर इतनी सी बात पर भी हम ध्यान देंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। कड़ोसियों का पत्र 3:12-17, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, सहनशीलता धारण करनी चाहिए। हमें जांच कर देखना चाहिए इनमें से कौन कौन से हमें कम है, इसको पालना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा किया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। ये मिनिमम है, सबसे कम। और आगे संत पौलुस कहते हैं, इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। इतना काफ़ी नहीं है कि क्षमा करो, एक दूसरे को सहन कर लो, इतना काफ़ी नहीं है। संत पौलुस कहते हैं, इसके अतिरिक्त आप में प्रेम भाव बनाए रखें, वह सब कुछ एकता में बांध कर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज करे। हमारे हृदय में मसीह की शांति राज करना चाहिए। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं, एक शरीर के अंग बनकर हम इसी शांति के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं, दूसरे लोग भी हैं उसी शरीर के अंग हैं। और जब हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एकता महसूस करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, तो हम उस शांति का अनुभव करेंगे जो यीशु के शरीर में है। हम यीशु के शरीर के अगर अंग बनेंगे तभी हमारे जीवन में शांति का अनुभव होगा। शांति का अनुभव करने के लिए हमें यीशु के शरीर का अंग बनना चाहिए। लेकिन एक दूसरे से लड़ते रहेंगे हम यीशु के शरीर के अंग नहीं बनेंगे। इसलिए एक दूसरे को क्षमा करें और उसके अतिरिक्त उनको प्यार करें। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं उसी को बोलते हैं ध्यान। दो या तीन लोग मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मतलब मेरे नाम पर एकत्र होने का मतलब न केवल प्रार्थना के लिए लेकिन उनके मन की एकता होनी चाहिए, हृदय की एकता होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। हम प्रेम से दूसरों के साथ रहते हैं, हम बोल सकते हैं हम एकता में रहते हैं। हम दूसरों को बर्दाश्त करते हैं तब एकता में फिर भी कमी है, बर्दाश्त करते हैं, एक शुरुआत है। क्षमा करने के बाद हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। मसीह की शिक्षा अपनी पूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे की शिक्षा, एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र, आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो भी कहे या करें सब कुछ ईसा के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। अगर इतना हम कर पाएंगे तो हम पवित्र बनेंगे।